तो बच्चों आज हम आपको सुनाएंगे किस तरह से कृष्ण भगवान ने जरासंध को 18 बार हराया। तो 18वां बार का हो सकता है आज में नहीं आए, तो 17 बार किस तरह से हराया हम आपको वो बताएंगे आज। और इसके भाग दो में आपको बताएंगे कि फिर किस तरह से कृष्ण ने द्वारका बसाई। तो आज की हम कथा का हम शुरुआत करते हैं। एक बार आपको हमने पहले ही बताया था कि कृष्ण ने कंस को मार दिया था। तो कंस को जब मार दिया तो उनकी जो दो पत्नी थी उनको पति को मार दिया था, तो वो कहाँ जाती? तो फिर उनका कोई बड़ा बेटा भी नहीं था, तो वो अपने पिता के घर चली गई जो कि मगधराज जरासंध के घर चली गई। बच्चों ये मगध वही है जो आज का बिहार है। और जब वो वहाँ चली गई तो फिर बड़े रोते हुए अंदर गई और रोते रोते उन्हें पिताजी से मिली। पिताजी को देखा, बहुत रोई। फिर उसके बाद पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? तो बताया पूरा इंसिडेंट कि किस तरह से कृष्ण ने कंस को मार दिया, उनके पति को। जब उन्होंने सुना और देखा अपनी बेटियों को बहुत दुखी दुखी, तो उन्होंने वहीं प्रण कर लिया कि अब मैं पूरी दुनिया से यदु के जितने भी लोग हैं सबको मिटा डालूंगा, और क्योंकि कृष्ण ने कंस को मारा है इसलिए उसकी पूरे समाज को मार डालूंगा। वो राजा बहुत ताकतवर था बच्चों, बहुत सारे दोस्त थे उसके अलग अलग जगह पे, और उसका बहुत मिलिट्री ताकत भी थी खुद की। तो उस तो वो अरेंजमेंट करने लग गया कि मथुरा को किस तरह से करें। हजारों चैरियट्स, हजारों रथ, हजारों घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक लेके इस तरह के 13 उसने ना मिलिट्री के सर्किल्स बनाए कंस का बदला लेने के लिए। फिर उन सबको लेके वो मथुरा को के पास पहुंच गया और चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। जब उसने ऐसा करा तो कृष्ण ने जो वहाँ पे सूर्य के समान थे उन्होंने पूरी सेना को देखा जरासंध की, जो एक ओशन की जैसी दिख रही थी। जहाँ तक आंख जाती वहीं तक वो समुद्र की जैसी सेना लग रही थी। फिर उनको देख के फिर मथुरा के जो सिटीजन्स थे ना बच्चों, वो भी डर गए कि अब इतनी सारी आ गए, हे भगवान हमारा क्या होगा। भगवान तो वहीं रहते थे उनके पास ही। क्या होगा क्या होगा, और शहर का क्या होगा। और फिर जब कृष्ण भगवान ने देखा कि उनके मथुरा वासी दुखी हो रहे हैं, डर रहे हैं थोड़े से, तो और ये जरासंध ने पूरी मथुरा को घेर लिया है, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बोला, मेरा यहाँ पे आने का उद्देश्य है पापियों का नाश कर देना और अच्छों को बचा के बचाना, जो अच्छे लोग हैं उनको। तो आखिर उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, ये बहुत सारे पापी लाया जरासंध, तो अगर मैंने इसको मार दिया तो फिर ये वापस पापी को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। आखिर पापी होता कौन है? जो कृष्ण, मतलब कृष्ण सोच रहे हैं कि जो मेरा विरोध करे वो पापी है, तो जो मुझसे लड़ने आया इसका मतलब उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। तो बोला, जो मेरे से नष्ट होना चाहता है वो तो पापियाँ हैं, पापी हैं, तो ये भर भर के ला रहा है, और मेरा काम है पापियों को मारना, तो इसको मैं नहीं मारूंगा। मैं काम करूंगा कि मैं इसके साथ आए सारे लोगों को मार डालूंगा सिवाय इसके, और इससे मैं अपने मनुष्य योनि में आने का पर्पस को भी सॉल्व कर दूंगा। यही मेरा कारण था यहाँ पे आने का पृथ्वी पे। इस तरह से जब उन्होंने सोचा, सोच ही रहे थे बच्चों, तभी आसमान से बहुत सुंदर सुंदर दो रथ वहां पे आए, जो कि रथी के साथ थे, मतलब रथ चलाने वाले के आदमियों के साथ भी थे। उसमें बहुत तरह के वेपन्स भी थे और बहुत सुंदर सुंदर झंडे जो होते हैं ना वो भी थे, और भी उसमें बहुत सारी कुछ चीजें थी। वो उड़ भी सकता था और वो अंतरिक्ष से आया था। कृष्ण ने जब उनको देखा तो पास ही बैठे हुए बलराम जी से कहा, जो कि संकर्षण के नाम से भी जाने जाते हैं, बड़े भैया आप तो भगवान हैं इस संसार के, आप ही तो इस यदु कुल के संरक्षक हैं। ये जो हमारे यदु कुल हैं, अब इनको बड़ा भय लग रहा है जरासंध से, बड़े भैया ये बड़े दुखी हैं, अब आप ही तो उनको दुख से बचा सकते हैं। ये बड़े भैया देखिए देखिए, अपने आपको इस कार्य के लिए हमारे पास दो बड़ अते सुंदर दो रथ हमारे पास आए हैं अंतरिक्ष से, और हमारा तो कार्य ही यही है इन अवतार में कि हम पापियों को नाश कर दें और भले लोगों को बचाएं। तो भैया ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई हमारे पास, आपकी परमिशन हो भैया तो हम इसको करें। तो बलराम जी ने कहा हाँ हाँ चलो 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 कृष्ण, चल अपन इसको अभी हटा मार डालेंगे अभी यहीं पे। तो कृष्ण बलराम दोनों दशारह के जो मतलब बेटे बेटी पूर्वज जिनके थे दशारह, उन्होंने वहां आके सोचा कि हम 13 की 13 जो ये कंपनी आई है मिलिट्री कंपनी जरासंध की, चारों तरफ से मिलिट्री मथुरा को घेरे हुए, इसको मिटा डालेंगे। फिर उन्होंने मिलिट्री ड्रेस ली, मिलिट्री ड्रेस लेके उन्होंने रथ पे चढ़ गए। कृष्ण के रथी थे दारुका, और बलराम जी उस रथ में पड़े, उस रथ में गए जिनका झंडे के ऊपर पाम ट्रीज का निशान था, और कृष्ण उस रथ में गए जिनके झंडे पर बताइए किसका निशान था, गरुड़ का। तो कृष्ण गए गरुड़ के झंडे के निशान पे के साथ, और बलराम जी गए पाम ट्रीज वाले झंडे के निशान के साथ। फिर जब वो बाहर निकले तो बच्चों छोटी सी सेना लेके निकले थे, बहुत बड़ी सेना नहीं थी उनके पास। उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपना शंख बजाया बहुत जोर से मथुरा की बॉर्डर पे, और वो जो शंख था बच्चों उससे जितने भी वहां के लोग थे ना उनका हार्ट बहुत तरह से डरने लग गया। आपको पता है आवाजों से हमारी कैपेसिटी चेंज हो जाती है, पता है कैसे होती है? आप मान लो आप कुछ है ना, आप बहुत फोकस होके पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आपस में कोई आपके चीज करेगा तो कैसा लगेगा आपको? फोकस कम हो जाएगा ना, पढ़ाई में अटेंशन कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है पढ़ने की। ऐसे यहाँ पे भी होता है। या मान लो आप कुछ क्रिकेट कुछ खेल रहे हो और आपको कोई आवाज़ लगा दे बॉल को हिट करते वक्त, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है ना। तो ऐसी ये जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं हमारी शक्ति कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। तो इसी तरह से ये जो आवाज़ करी कृष्ण भगवान ने, ये उनके लिए नुकसानदायक थी, इनके लिए अच्छी आवाज़ थी। तो उनसे उनको ताकत और कम हो गई, उससे बहुत कम। उसके बाद फिर उन्होंने जब जरासंध के सामने आए तो जरासंध को शर्म आ गई। पता है जरासंध को शर्म क्यों आई? वो तो लड़ने आया था, फिर भी शर्म आ गई। उनको तीन कारण से शर्म आ गई बच्चों। पहला तो कि इसने अपने मामा को मारा, इससे कैसे लड़ाई करूँ, ये तो पापी है। पर उस बेवकूफ़ को ये समझ में नहीं आया जरासंध को कि ये तो इस जिसके लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ कंस, उसने भी तो उसके जो मामा के उसके भांजे थे उनको मार दिया, कृष्ण के जो भाई थे उनको मारा था ना उसने कृष्ण के जन्म से पहले। तो उनको तो ये समझ नहीं आया कि मेरे मेरी बेटियों के जो हस्बैंड है उसने कितने पापी कितने अपने रिश्तेदारों को मारा, उसको ये समझ में नहीं आया। पर कृष्ण के उसको प्रॉब्लम दिख रही थी कि उसने मामा को मारा। तो ऐसे पापी लोग होते हैं। फिर उसने ये सोचा कि ये तो क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि इसको तो नंद बाबा जो कि गाय पालते थे बिजनेस कम्युनिटी के थे उन्होंने बड़ा किया था, तो ये तो क्षत्रिय नहीं है, इसके साथ कैसे युद्ध करूं। फिर उनको इसलिए भी शर्म आई कि ये तो इसने अपने आप को छुपा के रखा बचपन में, बचपन में तो क्षत्रिय बना नहीं और उसके बाद बड़ा आया बड़ा बन गया क्षत्रिय। इस तरह से वो कृष्ण के सामने जाने से कतरा रहे थे, और उन्होंने फिर बलराम जी से बोला हे बलराम, अगर तू चाहे तो तू भी कृष्ण के साथ मेरे से लड़ सकता है, अगर तेरे में धैर्य हो तो रुक, अभी तुझे मेरे एरो का अपने पास आके तुझे अंतरिक्ष में बड़े बड़े लोकों में ले जाएंगे, क्योंकि यही गति होती है जो युद्ध में मरते हैं, ऐसा उसने बोला। तो इसको सुन के कृष्ण बोले कि हे प्रिय राजा जरासंध, हीरो ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो अपनी शक्ति दिखाते हैं, अगर तुम में ताकत है तो लड़ो, और तुम्हारे इस तरह की बातें ये बताना चाहती हैं कि तुम जल्द ही इस युद्ध में मारे जाओगे, हमें तुम्हारे से सुनने की कोई परवाह नहीं है, हम कुछ नहीं सुनना चाहते तुमसे, क्योंकि जो मरने वाला हो या जो बहुत दुखी हो उसकी बात को सुनने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा जब कृष्ण ने बोला फिर वो लड़ने शुरू हो गए। बच्चों कृष्ण को चारों तरफ से घेर रखा था बहुत बड़ी सेना ने, जो कि जहां तक आंख जाती थी वहीं तक समुद्र की जैसे वो सेना थी। जब कृष्ण ने ये देखा कि इतने बड़े बड़े हैं तो उनको सोचने लगा क्या है, और उसी वक्त बच्चों वहां पे जो मथुरा में जो बड़े बड़े घर थे ना ऊंचे ऊंचे, उन पे उनकी महिलाएं और लोग इकट्ठे होने लगे, वो देख रहे थे भगवान को। और जब भगवान इस तरह से लड़ते लगते जब गायब हो गए बीच में, उन सब के, तो उनको बहुत दुख हुआ, उनको लगा कि हमारे कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए। और कुछ को इतना प्रेम था कि वहीं पे बेहोश हो गए, इतने प्रेम करते थे वो कृष्ण से। फिर जब उन्होंने देखा कृष्ण भगवान ने कि मेरे पास छोटी सी सेना है, और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी सेना को परेशानी होगी, वो हो सकता है मर भी जाए कुछ, तो इसलिए उन्होंने अपना महान धनुष हाथ में ले लिया जिसका नाम था श्रंग। वो बच्चों धनुष बड़ा भयंकर था, दुनिया का सबसे भयंकर, उसको कोई नहीं हरा सकता। और वो जब एक बार हाथ में ले लेते हैं भगवान, और फिर जब मारना मारना शुरू करते हैं, तो उसके सामने आने वाला कोई नहीं बचता। बच्चों उन्होंने ऐसे फिर तीर निकाल निकाल के मारे, जैसे कि आप आंख से अगर देख रहे हो तो आपको सब जगह नीडल्स ही नीडल्स सुनाई दिखाई दे, बहुत स्पीड से जाते थे। एक एक स्पीड से इतनी थी कि एलिफेंट्स का भी गला काट देते थे और वो नीचे गिर जाता था, बहुत ताकतवर थे। और वो एक ही बार में सभी दिशाओं में एक साथ वार कर रहे थे, और एक ही डायरेक्शन में तो कर ही रहे थे, पर आगे और पीछे सबको भी मार रहे थे इस तरह से। तो बच्चे बहुत ताकतवर, मान लो एक सर्किल के जैसे घूम रहा है, जिसका कभी उधर है एरो, कभी इधर है एरो, कभी पास वाले के पास है, कभी दूर वाले के पास है, ऐसे बहुत जबरदस्त तरीके से सर्किल से एरो मारने लगे। इस तरह से वहां पे हजारों हाथी मरने लगे, हजारों घोड़े मरने लगे, कईयों लोग मर गए। धीरे धीरे उनके रथ को भी मार डाला उन्होंने, और जो उनके रथी थे चल रथ चलाने वाले, और जो लड़ने वाले थे उनको भी मार दिया। बहुत तेजी से लड़ रहे थे, और फिर इस तरह से उनके हाथ पांव सब काट, बहुत गंदे तरीके से मारा उनको बच्चों। फिर भगवान ने इसलिए क्यों किया, क्योंकि वो सब पापी थे, भगवान इसीलिए आए थे यहाँ पे उनको मारने के लिए पृथ्वी पे, और उन्होंने यही कर रहे थे। आखिरी में बच्चों पता है क्या हुआ उनसे, बहुत डरावना सीन हो गया वहाँ पे, और उन सबका वहाँ पे खून जमा हो गया, और उन सब में वो सब तैरने लग गए, बहुत गंदा हो गया बच्चों। ऐसा लिखा है कि जो डरपोक होते हैं वो इनको देख के डर जाते हैं, और जिनके पास पुण्य राशि की कमी होती है वो सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो एक सुई में से भी हाथी को निकाल सकते हैं, इसलिए वो भगवान के एक्शंस पे उंगली नहीं उठाते हैं, जैसा लिखा है वैसा का वैसा मान लेते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए पृथ्वी तो तैर रही है ना अंतरिक्ष में, उसके नीचे क्या है, इतनी भारी पृथ्वी है फिर भी घूमती रहती है, और सूरज भी इस तरह से चक्कर काटता रहता है, और सूरज की पृथ्वी चक्कर काटती रहती है, कभी कभी डीले हुआ है, सूरज भी टाइम पे उगता है और सूरज टाइम पे अस्त भी होता है। तो सोचिए जो इतना ताकतवर हो उनके लिए ऐसी छोटी सी चीज क्या है बड़ी, पर फिर भी क्योंकि वो भगवान है और उन्होंने मनुष्य जैसे छोटा सा एक रूप ले रखा है, तो हमें कन्फ्यूजन होता है और हमें लगता है कितना अद्भुत है भगवान ने ऐसा कर दिया। तो बच्चों बहुत बड़ी नदी बना दी उन्होंने वहां पे इंसानों की और उनके कटे हुए पार्ट्स की। फिर जब सारे लोग मर गए जरासंध के, तो वो एक ही अकेला बचा, बहुत डिप्रेस हो गया, सोचा हाय इन्होंने मेरे सारे रथ को मार डाला, मैं क्या करूंगा अब जी के। उसी वक्त तो फिर बलराम जी आ गए, बलराम जी ने भी बच्चों बहुत भयंकर लड़ाई करी थी, अपनी गदा से उन्होंने एक ही बार में हजारों हजारों को मारते थे, वो बड़ा भयंकर पिचका देते थे एकदम मार मार की गदा से। इसलिए बलराम जी बहुत ताकतवर थे, और बलराम जी ताकतवर थे इसलिए भी थे वो भगवान, भगवान है इसलिए ताकतवर हैं। तो फिर बलराम जी आए, गुस्से से उसे मारते हुए उसके वरुण की रस्सी बांध दी, और साधारण रस्सी से भी उसको बांध दिया, और उसको घसीटते हुए लाने लगे। तब कृष्ण जो थे वो वहां पे आए, उन्होंने सोचा कि किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने पुराने प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बलराम जी से, भैया इसको एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको मार के क्या करना है हमें, हमें कोई मगध का राज थोड़ी चाहिए, ये तो आया था हमें मारने के लिए, इसलिए हमें इसको कैसे युद्ध करना पड़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तो बलराम जी को जब ऐसा बोला कृष्ण ने, तो बलराम जी ने कहा ठीक है जा। इस तरह से उसको बहुत बेइज्जती कर दी थी, और बच्चों क्षत्रियों के लिए बेइज्जती ही मौत के समान होती है। फिर जब वो इस तरह से, उसके और भी कुछ बड़े बड़े राजा लोग बचे थे, उनके साथ छूट के जब वो घर जा रहा था ना वापस, तो उनके लोगों ने, जो उनके दोस्त थे ना मिलिट्री वाले जो राजा थे, उन्होंने उससे कहा कि आप इतने उदास क्यों हो? ये तो सिर्फ आपके किस्मत के कारण हुआ है, आपके बुरे कर्म थे इसलिए आप हार गए, और आपने तो कोई कमी रखी नहीं लड़ने में, आपने तो बहुत हीरोइकली लड़ाई लड़ी है, इसलिए आपको वापस अपनी शक्ति इकट्ठी करनी चाहिए और फिर वापस से युद्ध करना चाहिए। इस तरह से जब उसको इंसल्ट किया गया था और फिर वापस छोड़ दिया था, तो उसने सोचा था कि मैं तो घर जाके वापस से ना साधु बन जाऊंगा और जंगल में जा जाऊंगा, ये तो मृत्यु के समान है, इसको कोई मतलब नहीं है करने का। पर फिर जब उनके दोस्तों ने इस तरह से बचाया तो उसने सोचा ठीक है मैं एक बार फिर विचार करता हूँ। फिर इस बीच में जो वहाँ पे जब कृष्ण जीत गए और वो वापस जाने लगे, तो देवताओं ने उन पर फूलों की बारिश करी, उन्होंने भगवान के बहुत सारे गाने गाए। उसके बाद जब वो अंदर आने लगे तो वहाँ पे सूत और मागध जो होते थे पुराने ज़माने में, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भगवान के लिए गाए। फिर उसके बाद वह बहुत आते ही बच्चों का स्वागत, भव्य स्वागत हुआ, और उन्होंने बहुत सारे कैटल्स, ड्रम्स जो होते हैं ना, उनको बहुत अलग अलग आवाज़ों में बजाया, कोई बड़ी बड़ी फुफाड़ियाँ बजा रहा था, भेरियाँ, तुर्रियाँ, वीणा, फ्लूट्स, मृदंग सब एक साथ बहुत सारे बज रहे थे, और पूरी शहर को साफ किया गया था, और उन पे आसपास में घी दही में पुराने ज़माने पता है क्या करते थे, दही में जो लीव्स होती है उनको डाल के चारों तरफ फैला देते थे, उससे बहुत ऑस्पेशनेस आती थी, और इस तरह से वो कर रहे थे, और उनको महिलाओं ने बहुत सुंदर सुंदर हार भी बना के पहनाए। फिर कृष्ण बलराम युद्ध के स्थल से लूटी हुई जितनी भी वो जो उनके ऑर्नामेंट्स थे ना, जो वहाँ पे सोना चांदी जो भी मिला था उन्हें, वो सब लाए थे, और उन्होंने उग्रसेन जो कि राजा थे मथुरा के, उनको दे दिया सब कुछ। इसके बाद बच्चों जरासंध ने फिर वापस अटैक किए, इस तरह से उसने 17 बार अटैक किया, जब भी वो आता इसी तरह से भगवान उसके सारे लोगों को मार देते जो कि हजारों लाखों में, लाखों करोड़ों में होते थे। उसके बाद फिर वापस वो हार के चला जाता था, फिर वापस आता था और वापस उसको अरेस्ट करके फिर उसी तरह से बेइज्जती करके उसकी वापस भेज देते थे। पर जरासंध को मारते नहीं थे कृष्ण भगवान, मार तो सकते थे फिर भी नहीं मारते थे, क्योंकि उनका काम था वो और ऐसे लोग लाए और वो और उनको मार दे भगवान। पर बच्चों फिर 18वीं बार जब उन्होंने अटैक किया जरासंध ने, तब उसके साथ कुछ और भी हुआ जिसके कारण कृष्ण भगवान को द्वारका बसानी पड़ी। 18वीं बार के युद्ध में क्या हुआ यह हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए हरे कृष्णा।